वो मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। राधिका की जुबान जरा लड़खड़ा गई। माधव से दो कदम दूर खड़ी घबराहट में बुरी तरह अपने हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाए तोड़ मरोड़ रही थी। उसने कातर नजरों से माधव को देखा, जो शॉक्ड सा उसी पोजीशन में खड़ा फटी आंखों से उसे देख रहा था। माधव जी, आपने सुना ना मैंने क्या कहा? राधिका ने उसे यूं पत्थर बने खड़े देखा तो उसके पास आकर उसकी बांह को हल्के से हिलाया। माधव चौंकते हुए होश में लौटा और एकाएक उसने राधिका के कंधों को थामते हुए उसे अपने करीब कर लिया। क्या कहा आपने? क्या लग रहा है आपको? माधव के शब्द भी बिखर से गए और वो फटी आंखों से अचंभित सा उसे देख रहा था। राधिका ने बारी बारी उसकी दोनों आंखों में झांका, जिनमें ढेरों सवाल छिलमिला रहे थे। मुझे लगता है कि मम्मी जी के अपने पोते पोती को देखने की इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। राधिका, आप सच कह रही हैं? माधव अब भी हैरान था। ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसके बारे में उसने दूर दूर तक सोचा तक नहीं था, और अचानक ये बात उसके सामने आई तो उसके लिए अब इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। माधव को इस कदर हैरान देखकर राधिका की घबराहट बढ़ने लगी। मैंने टेस्ट किया है 2 बार और दोनों बार पॉजिटिव रिजल्ट आया है, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट करवाने से डर लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने अभी डॉक्टर से टेस्ट नहीं करवाए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं टेस्ट करवा लूँगी, फिर श्योरिटी हो जाएगी। राधिका जैसे जैसे बोलती जा रही थी, माधव के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। बहुत कुछ चल रहा था उसके मन में इस वक्त। राधिका के कहे शब्द उसके जहन में गूंज रहे थे और ढेरों सवालों को जन्म दे रहे थे। हैरानी की जगह पर गंभीर निगाहों से वो राधिका को देखने लगा था। आपको ये बात कब पता चली? 2 दिन पहले ही टेस्ट किए थे। राधिका ने निगाहें झुकाते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, जिसे सुनकर माधव एक बार फिर चौंक गया, पर चेहरे पर गंभीर भाव जस के तस बने रहे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माधव ने अपनी लरस्ती पलकें उठाकर उसे देखा और घबराहट में अपने होंठ को दांतों से काटने लगी। जवाब दीजिए मुझे राधिका, जब 2 दिन पहले आपने टेस्ट किया तो मुझे अब तक कुछ क्यों नहीं बताया? माधव ने अपना सवाल दोहराया और अब की बार उसका लहजा सख्त था। राधिका ने एक बार फिर अपनी पलकों को झुका लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं, और घबराहट भी हो रही थी थोड़ी सी। माधव ने अब उसके कंधों को छोड़ दिया और अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी को थामते हुए उसके चेहरे को ऊपर करते हुए सवाल किया, किस बात की घबराहट राधिका? माधव की ठहरी हुई गंभीर आवाज राधिका के कानों से टकराई तो उसने हौले से अपनी पलकें उठाकर उसे देखा और आंखों में मौजूद नमी को छुपाते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, हमारी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। आपने पहले कभी बच्चे का जिक्र भी नहीं किया, हमने इस बारे में प्लानिंग भी नहीं की थी, और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे डर था कि कहीं आप नाराज ना हो जाए, ये ना कहें कि आपको इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए तो अबॉर्शन करवा लूं। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। राधिका की आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर छलक आए, पर ना तो माधव ने उसके आंसुओं को पोंछने की कोई तत्परता दिखाई और ना ही उसके चेहरे के भाव में कुछ बदलाव आया। डॉक्टर के पास जाने से क्यों घबरा रही थी आप? मैं खुश भी थी और नर्वस भी, चाहती थी कि डॉक्टर के पास आपके साथ जाऊं, पर आपसे कैसे कहूं समझ नहीं आ रहा था। राधिका ने एक बार फिर अपनी निगाहों को झुका लिया। आंसू अब भी उसकी पलकों से फिसल कर उसके रुखसारों पर बिखर रहे थे। माधव कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसकी सर्द आवाज राधिका के कानों में पड़ी, राधिका इधर देखिए मेरी ओर। राधिका की आंसुओं से भीगी निगाहें माधव की ओर उठ गई और चेहरे पर बेबसी के भाव उभर आए। मैं इस बच्चे को मारना नहीं चाहती। जाने क्या चल रहा था उसके मन में कि इस कदर घबराई हुई थी वो। इतना डर बसा था उसके मन में कि आंसू थम नहीं रहे थे और वो आंखों से जैसे माधव से मिन्नत कर रही थी। माधव कुछ पल भावहीन सा उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और बड़े ही प्यार से उसकी भीगी आंखों को अपने अंगूठे से पोंछ दिया। सबसे पहले तो आप रोना बंद कीजिए, बिल्कुल चुप हो जाइए। मैं वादा करता हूँ आपसे, जो आप चाहती हैं वही होगा। अब बिल्कुल शांत हो जाइए और मेरे बस एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमारा बच्चा नहीं चाहता, या मैं इस खबर से खुश नहीं होऊंगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं भला क्यों अपने ही बच्चे को मारने की बात कहूँगा? ये डर आपके मन में कहाँ से और कैसे आया, मुझे बस इतना जानना है। माधव बेहद शांत और गंभीर नजर आ रहा था। उसके सवाल सुनकर राधिका ने अपनी पलकों को झुका लिया और रुंधे स्वर में बोली, अजय को जब मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था तो वो मुझ पर बहुत नाराज हुआ था और मुझे अबॉर्शन के लिए भी कहा था। वो बच्चा नहीं चाहता था। माधव का चेहरा एकदम सपाट हो गया और उसने राधिका को खुद से दूर कर दिया। मैं कौन हूँ राधिका? माधव की सर्द भारी आवाज़ राधिका के कानों से टकराई तो वो भीगी पलकें उठाए हैरत से उसे देखने लगी। उसे खामोश देखकर माधव ने अपना सवाल दोहराया, बताइए राधिका, कौन हूँ मैं? आप माधव जी हैं? राधिका कन्फ्यूज सी आंखें बड़ी बड़ी किए भीगी निगाहों से उसे देखने लगी। माधव ने अगला सवाल किया, हमारी शादी को कितना वक्त हो गया राधिका? 2.5 साल होने वाले हैं। कितना विश्वास करती हैं आप मुझ पर? माधव का ये सवाल सुनकर राधिका चुप्पी साधे उसे देखने लगी।
उसे खामोश देखकर माधव ने ही आगे कहा, जवाब नहीं आपके पास या विश्वास ही नहीं आपको मुझ पर। ढाई साल के रिश्ते में इतना ही जान सकी हैं आप मुझे। हमारी शादी को ढाई साल हो गया राधिका, पर आज भी आपके जहन में अजय बसा है। क्यों, इतना वक्त मेरे साथ बिताने के बाद भी आप मुझे अपने पहले पति से कंपेयर करती हैं? क्यों, आपको आज भी ऐसा क्यों लगता है कि जो उसने आपके साथ किया वही मैं करूंगा? आप क्यों हर बार मुझे उसके बराबरी में लाकर खड़ा कर देती हैं? आपको मुझ में और उसमें कोई अंतर नजर नहीं आता? क्यों आपको आज भी मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर विश्वास नहीं है? क्यों आपका पास्ट आज भी हमारे आज में शामिल है? जवाब दीजिए मुझे राधिका। माधव की आवाज़ धीमी थी पर कठोर थी। चेहरे पर गुस्सा, नाराजगी, शिकायत जैसे कई भाव नजर आ रहे थे। उसकी आंखें राधिका से जवाब मांग रही थी और राधिका स्तब्ध सी उन आंखों में अपने लिए गुस्सा और नाराजगी देख रही थी। राधिका ने आज फिर माधव को जाने अनजाने अजय समझ लिया था और यही भूल कर गई थी वो। अपने अतीत को अपने आज से जोड़कर उसने माधव की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, उसके मन को आहत किया था। राधिका को खामोश देखकर दर्द भरी मुस्कान माधव के लबों पर थिरक गई। आपकी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया कि आज भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं। आपकी नज़र में मुझ में और अजय में कोई अंतर नहीं। मैं कितना ही कुछ भी कर लूं, आपका पास्ट हमेशा हमारे बीच रहेगा और हर बार यूं ही मुझे कटघरे में खड़ा किया जाएगा। मुझे अजय जैसा समझकर मुझे मेरी ही नज़रों में गिराया जाएगा, मेरी मोहब्बत को जलील किया जाएगा। पर कोई बात नहीं, आपसे मोहब्बत करने की अगर यही सज़ा है तो यही सही। आज तक करता आया हूँ, आगे की कोशिश करता रहूँगा। कभी तो आपका विश्वास हासिल होगा मुझे, कभी तो आप मानेंगी कि मैं अजय नहीं हूँ, कभी तो आप अपने पास्ट को भुलाकर पूरी तरह से मेरे साथ अपने प्रेजेंट को जिएंगी। माधव ने दर्द भरी आह छोड़ी, आंखों में आई नमी को अंगूठे से साफ किया, सिकुड़ते फेफड़ों में हवा भरी और निगाहें राधिका भी चेहरे पर टिका दी। कल सुबह हम डॉक्टर के पास चलेंगे, तैयार रहिएगा।
इतना कहकर वो पलटकर कमरे में चला गया और राधिका सुन्न सी वहां खड़ी ही रह गई। उसकी कानों में माधव के कहे शब्द गूंज रहे थे, आंखों के आगे माधव की वो शिकायत करती नम आंखें घूम रही थीं। मन अजीब सा हो गया था और उसे समझ आ रहा था कि उसने अपने हाथों अपनी सारी खुशियों को तबाह कर दिया है। कभी उससे नाराज़ न होने वाले माधव को आज उसने नाराज़ होने पर मजबूर कर दिया। अपने व्यवहार और बातों से उसके मन और भावनाओं को इस कदर आहत किया कि वो उससे निगाहें फेर कर चला गया। ये ख्याल मन में आते ही राधिका बदहवास से अंदर की ओर भागी। माधव को बेड के कोने में उसकी ओर पीठ किए लेटे देखकर उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी नहीं उससे मुंह मोड़ दिया है। सीने में तेज़ दर्द सा उठा और आंखें भीग गईं। राधिका माधव के पास आई और उसकी हथेली को अपने माथे से लगाए फपक फपक कर रो पड़ी। सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैंने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया। मेरा आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं भूल कर भी आपको अजय से कंपेयर करके आपकी इंसल्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपकी परछाई के भी बराबर नहीं। मुझे विश्वास है आप पर, बहुत विश्वास है। मैं जानती हूँ आप अजय नहीं हैं, वो तो बहुत बुरा था और आप बहुत 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 अच्छे हैं। बस मैं घबरा गई थी, मैं अपने पास्ट को हमारे आज में नहीं लाना चाहती थी, पर मेरे पास्ट से जुड़ी कुछ बातें आज भी मुझे इफ़ेक्ट करती हैं, कुछ दर्द मैं चाहकर भी नहीं भुला पाती। उस वक्त जब मुझे मेरी प्रेगनेंसी का पता चला था, मैंने क्या सहा, किस दर्द से गुजरी, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और अब जब मुझे दोबारा अचानक मेरी प्रेगनेंसी का पता चला तो मैं डर गई थी। गलती मेरी है, मैं मानती हूँ, मैंने जाने अनजाने आपको भी अजय जैसा समझ लिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस, मैं दोबारा कभी अपने पास्ट का जिक्र नहीं करूँगी, अजय का ख्याल भी अपने मन में नहीं आने दूंगी, कभी दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे आपके मन को ठेस पहुँचे। बस आप नाराज़ मत होइए मुझसे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, बस इस बार माफ़ कर दीजिए। माधव सोया नहीं था, बस आंखें बंद किए लेटा राधिका की सिसकियों और उसकी बातों को सुन रहा था। मन आहत था उसका, राधिका से नाराज़ भी था, पर फिर भी राधिका के आंसू और उसकी बातें उसकी तकलीफ बढ़ा रहे थे। राधिका सर झुकाए सिसकने लगी। अब जाकर माधव ने अपनी आंखें खोली और राधिका के आंसुओं से भीगे चेहरे को बिना किसी भाव के देखने लगा। राधिका, मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई जो आज भी आपका अतीत इस कदर आप पर हावी हो जाता है, इतना इफ़ेक्ट करता है आपको? राधिका ने सर झुकाए सिसक रही थी, पलकी उठाकर माधव को भीगे निगाहों से देखने लगी। कमी आपकी मोहब्बत में नहीं, मुझ में है। मैं जानती थी कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर वो सब भुलाकर कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकूंगी, कभी एक नॉर्मल लड़की जैसे नहीं जी सकूंगी। शादी कर भी लूं, तब भी मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और वो बातें मेरे आज और आने वाले कल को बर्बाद कर देंगी। मैं कभी फिर से वो राधिका नहीं बन सकूंगी जो पहले थी, और ना ही अपने पति के साथ एक आम ज़िंदगी जी सकूंगी। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी, आपसे भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जानती थी कि मेरा पास्ट आपकी तकलीफ़ की वजह बन जाएगा। मैं कभी आपको अजय से कंपेयर नहीं करना चाहती थी, कभी अपने आज को अपने अतीत से नहीं जोड़ना चाहती थी,
पर जब भी ऐसा कुछ होता है जो मेरे साथ पहले भी हुआ है, जिससे मेरी कोई बुरी दर्द भरी याद जुड़ी है, मैं अपने अतीत में चली जाती हूँ और फिर सब खुद होता चला जाता है। अनजाने तौर पर आपको अजय से कंपेयर कर देती हूँ। माधव कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, शायद कुछ सोच रहा था। फिर उसने राधिका से अपना हाथ छुड़ाया और उठकर बैठ गया। राधिका की हथेली थामकर उसे भी अपने पास बिठा लिया। टू बी कंटिन्यूड। क्या करने वाला है माधव? कौन यहाँ सही है और कौन गलत?